579 from Highway 401 in Napanee, Ahoji. Koi appointment nahi, drive through facility. Exit 579 from Highway 401 in Napanee. Quick Truck Lube, the one stop shop. 519-622-0660 ja quicktrucklube.com. QTL, because we care. Quick Truck
Lube! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ $5,000 ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ 92% ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਪਲੱਸ $5,000 ਈਅਰਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜੌਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-836-6974 416-836-6974।
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ਓ ਮਾਇਆ ਮਹਿੰਦੀ ਰੋਕਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ।
ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਲਾਜਵਾਬ। ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਬੌਨ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ 416-433-9191 416-433-9191
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ।
अब आज हमारा कनाडा जो है, चूंकि उसको यूक्रेन से बहुत ज्यादा प्यार है, हमारे से तो प्यार है ही नहीं, खास तौर से आमिर से तो बिल्कुल ही नहीं प्यार है जी। देख ले साल हो गया ना इसकी मुश्किल से, रो रो के एक तो होता ही, अब फिर से इसका पासपोर्ट नहीं आ रहा। तो आमिर तरह के लोगों से तो बिल्कुल ही प्यार नहीं है और हमसे भी नहीं है। प्यार किससे? यूक्रेन से। तो यूक्रेन के साथ प्यार और दिखाते हुए हमारी जो कनेडियन गवर्नमेंट है उसने और सैंक्शंस लगा दी हैं। जितनी वो एड एजेंसीज और जितनी भी जो थी ये पीआर एजेंसीज थी, जो कि ऑयल एंड गैस के साथ की पीआर और एडवर्टीजमेंट्स करती थी और रशिया के साथ रिलेटेड थी, उन सब के ऊपर जी सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसकी जो जानकारी है वो हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एंजेलिना जोली, मैं मेचन को कहती हूं मेलनी जोली क्योंकि ये बड़ी हसीन है ये भी एंजेलिना जोली की तरह। बहरहाल जी मेलनी जोली जो है हमारी, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी 28 आउटलॉट टाइप्स ऑफ कनेडियन कंसल्टेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट्स जो थे जो कि काम कर रहे थे इनके साथ, तो उन सबके ऊपर जो है हमने अब सैंक्शंस लगाई हैं। हालांकि ये जो है 50% ऑफ कंट्रीज रेवेन्यूज जो है ये जनरेट करते हैं। तो भरल जी ऐसा ऐसा हौले हौले और लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे पुटिन साहब को, तो इसलिए उनकी डायरेक्ट जो है वो इन कंपनीज की उनके साथ डीलिंग थी, तो इसलिए हमने और इनको जरा, यानी कि बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा रहे हैं रशिया को ताकि कुछ करने के वो काबिल ना रहे। तो भरल ये कितनी अच्छी बात हो सकती है ये आप खुद सोचें। किम्बरली मरे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ऑफ कनाडा की, इनको अब जो है स्पेशल एक ओहदा दिया गया है, स्पेशल इंटरलोक्यूटर का, ताकि इनको कहा गया कि जो ये जो फॉर्मर रेजिडेंशियल स्कूल्स थे इनके जो अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं उनको आपने देखना है, उनके बारे में जो है लॉज बनाएंगे और उनको स्ट्रेंथन करेंगे और ये जो प्रैक्टिसेज हैं गलत किस्म की इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अनमार्क्ड बरियल साइट्स जो हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है। ये असल में मेंबर हैं महानास्ताके मोहॉक नेशन की, तो जाहिर है कि ये उन्हीं में से हैं। तो इन्होंने कहा जी आज वादा किया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो हार्म इन लोगों को दिया गया है, इनके बच्चों को दिया गया है, उसको रोका जाए। इसकी आज अनाउंसमेंट जो थी इनकी अपॉइंटमेंट की जस्टिस मिनिस्टर जो है डेविड लमैटी और क्राउन इंडिजिनस रिलेशंस में जो मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने आज इनके बारे में की है। और ये जो हैं किम्बरली मरे ये बड़ी जो हैं वो हैं इस तरह की एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट थी इस मामले के ऊपर। वो हमेशा कहती थी कि भई ये जो है फर्स्ट नेशंस यहां पे इनके मामलात पे गौर करने की जरूरत है। तो अब उन्होंने कहा जी कि इन्हीं को लगाया जाए क्योंकि इनसे अच्छा इन मामलात को कोई नहीं जान सकता है। अच्छा जी दो टीन्स के ऊपर जी आमिर साहब टोरंटो पुलिस ने चार्जेस लगाए। सोचो जरा दो लड़कों के ऊपर कितने चार्जेस लगे होंगे। दो चार पांच दस पंद्रह कितने हैं?
दो चार ही लगे होंगे।
100 charges लगाए गए हैं जी टोरंटो पुलिस ने इन दो लड़कों के ऊपर। 100 charges लगाए हैं क्योंकि ये कार लिफ्टिंग के अंदर जो थे शामिल थे। 11 डेज जो मई के महीने के थे उसके अंदर इन्होंने 12 गाड़ियां जो है बिटवीन मई 15 टू मई 26 इन्होंने चोरी की थी। और ये दो लोग जो थे इनको बड़े अरसे से पुलिस ढूंढ रही थी और ये मिल नहीं रहे थे। बहरहाल जी फिर इनको पिन पॉइंट हो गए। ये इनके बारे में पता चला, किसी ने इत्तला दी पुलिस को कि दो मेल्स जो है वो एक स्टोलन व्हीकल ब्रैम्पटन के अंदर चला रहे हैं। तो टोरंटो पुलिस ने फिर उसके बाद इनको जब हंट डाउन किया तो इनके पास से लोडेड हैंड गन्स, रेप्लिका हैंड गन्स और कार थेफ्ट टूल्स और क्लोदिंग और बहुत कुछ जो है इनसे निकला। लेकिन पुलिस कहती है कि थैंक गॉड असल कोई जो है इन चीजों के इन वारदातों में कोई जो है वो जख्मी नहीं हुआ है। तो एक लड़के का नाम तो उन्होंने जारी किया है, उसका नाम है टाइलिक जोन्स और 44 ऑफेंसेस में के लिए इसको चार्ज किया है। और दूसरा लड़का 17 ईयर्स का है तो इसलिए उसका नाम नहीं बता रहे हैं और उसको भी 56 जो ऑफेंसेस हैं उसके अंदर चार्ज किया है। तो आप सोचेंगे छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं और इस उम्र में ही इनके पुलिस केसेस बनेंगे तो आगे की इनकी जिंदगी जो है वो कैसे गुजरेगी। बहरहाल जी दे जस्ट डू इट फॉर फन या थ्रिल के लिए और फिर गलत काम का गलत नतीजा होता है ये। मॉडर्ना जो है जी उसने बहुत दिनों से ये अपनी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग बना रहे थे तो आज इन्होंने बताया है कि ये जो ओमिक्रॉन आया है उसके अगेंस्ट भी हमारी ये जो कॉम्बिनेशन जो ड्रग है जो कि ओरिजिनल शॉट को दूसरी के साथ जो है वो शामिल करके बनाई गई है वो अब इसका खतरा कम करेगी और लोगों को बाकी के आने वाले जो फ्यूचर के कोरोना वायरसेस हैं उनसे भी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। उन्होंने कहा जी कि ये इसमें हमने देखा है कि जब हम जिन लोगों को हमने दी है तो बहुत ज्यादा वायरस फाइटिंग एंटीबॉडीज का इंक्रीज हो जाता है उस इंसान के अंदर जिसको ये दिया जाता है। तो ना सिर्फ ओमिक्रॉन बल्कि और भी बहुत सारे म्यूटेंट जो कोरोना वायरसेस हैं उनसे ये फाइट कर सकती है हमारी दवाई। रशिया और टर्की जो हैं जी ये अब एक डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मेवलद गोवोस्लू उन्होंने आज होस्ट किया हुआ था अपने रशियन काउंटर पार्ट सर्जे लैवरोव को अंकरा के अंदर और उसमें ये बात कर रहे थे कि जी ये जो ग्रेन है इसको गुजरने दिया जाए क्योंकि आपको पता ही है कि वीट जो है उसका बहुत ज्यादा डीप हो गया है क्राइसिस। तो ये कहा गया था कि ये जो ब्लैक सी है इसमें से इनको गुजरने दें और ब्लैक सी में मसला यह है कि कुछ एरिया के अंदर रशिया ने जो है वो माइंस लगाई हुई हैं। तो रशिया ने वैसे तो वादा किया है कि हम शिप्स को गुजरने देंगे और हम जो है उसको डी माइंड एरिया से बोलेंगे कि जी तुम उधर से जाओ और जहां पे हमने वो लगाई हुई है उधर से आप ना जाएं क्योंकि फूड का क्राइसिस दुनिया में बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज किया था कि यूक्रेन जो है उसको एक्सेस दिया जाए क्योंकि ये अगर एक्सेस मिलेगा तो ही 22 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन जो कि इनके पास अभी यूक्रेन के पास पड़ा है वो बाहर शिप आउट किया जा सकता है डिफरेंट कंट्रीज में। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यूक्रेन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट और कॉर्न है। टर्की का इसके अंदर कहना है कि जी आप जो है ये सैंक्शंस हटाएं रशिया के ऊपर से। रशिया जो है उसका ये कहना है कि हम ये कॉरिडोर जो है खोल देंगे अगर ये जो स्पेशली जो यूक्रेन की जो पोर्ट है ओडेसा ताकि ये सारा जो ग्रेन है ये बाहर जा सके ब्लैक सी से। लेकिन एक्सपर्ट्स का दुनिया में कहना है कि रशिया ने तो पहले भी बहुत सारे वादे किए थे और कहा था कि मैं यूक्रेन पे इन्वेजन नहीं करूंगा लेकिन उसने फिर अटैक किया और इन्वेड किया तो फिर हम रशिया की बात कैसे माने। तो बहरहाल ये कुछ मामला चल रहे हैं लेकिन उसके रहते हुए जो फूड क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा डीप होता जा रहा है। तो अब देखेंगे इनको इजाजत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा जनाब आमिर साहब ईरान ने तो आज फिर बड़ा 30 मार खान वाला काम किया है। डरते तो है नहीं ना ईरानी किसी से, बिल्कुल नहीं डरते। अच्छा जब इनकी डील बन रही थी आपको पता ही है कुछ अरसा पहले ओबामा साहब के जमाने में कि जी आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें और हम आपके ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे तो उस वक्त आईएईए वाले और उसके बाद भी कुछ इंस्पेक्टर्स आए थे और उन्होंने कहा था जी हम कैमराज लगा देंगे ताकि आपकी मूवमेंट हम देख सकें। आज ईरान ने क्या किया? अब ये बातें लिंगर होती जा रही है ना। ट्रंप साहब ने कहा था हमने ईरान से बात नहीं करनी, बाइडन साहब ने कहा नहीं हम फिर से करेंगे, दूसरी वेस्टर्न पावर्स कर रही थी, अमेरिका नहीं बैठ रहा था। तो अब फेडअप होके ईरान ने, क्योंकि सैंक्शंस तो हटा नहीं रहे ईरान से, ईरान ने आज वो सारे कैमरे हटा दिए उसने कहा इनकी बत्ती गुल करो भाई बत्ती गुल बस बत्ती गुल, ये
आप कैमरे बंद करो।
हाँ कैमरे बंद करो। ये एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान जो है इसने कहा जी हम टर्न ऑफ करें ये ऑनलाइन एनरिचमेंट मॉनिटर्स और फ्लो मीटर सिस्टम्स जो है इन सब की बत्ती हम गुल कर रहे हैं। तो जाहिर है अब इसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है आईएईए इसने बड़ा इसका बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि आपको ये करना नहीं चाहिए था। तो ईरान ने कहा जी हमने आपको इतला दे दी थी, ईरान ने आपको बता दिया था कि हम ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई ढक छुप के ये जो है ये काम किया है। तो ये उन्होंने बताया। लेकिन ईरान से आज एक अफसोस का जो वाकया है वो ये आया है कि एक ट्रेन थी वो इधर यहां पे डिरेल कर गई है और उसके अंदर 50 लोग सफर कर रहे थे, उसमें से 17 लोगों की जो है वो डेथ हो गई है। तो अब इसके लिए ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है कि भाई ये कैसे हुआ, ये सारे मामलात कैसे हुए। ये जा रही थी तबस के अंदर और ये डिरेल हुई वहां पे तेहरान से थोड़ी ही दूर, और अब वहां पे बहुत सारी रेस्क्यू टीम्स और एम्बुलेंसेज और हेलीकॉप्टर्स जो थे वो देखे जा रहे थे। और वो ये जो 7 में से 4 बोगियां जो आपको नजर आ रही हैं हमारे जो टीवी देख रहे हैं उनको, तो वो डिरेल जो हुई थी उसमें अब वो तलाश कर रहे हैं कि कोई अंदर रह तो नहीं गया, जख्मी है या डेथ हो गई है, तो वो सारी जो है काम चल रहा है। अच्छा जी, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडन साहब हैं वो समिट ऑफ अमेरिकाज करा रहे हैं। दिस इज द 9th समिट ऑफ अमेरिकाज। तो अब देखें ना, नाम क्या है, नाम है समिट ऑफ अमेरिकाज, तो इसके अंदर अब होने कौन चाहिए, सारे अमेरिकाज के कंट्रीज। हमने आपको कल बताया था या परसों हमने आपको बताया था शायद कि जो मेक्सिकन प्रेसिडेंट हैं लोपेज, उन्होंने कहा है जी कि मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं बॉयकॉट कर रहा हूं इसका। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने क्यूबा, वेंजुएला और निकारागुआ को कहा था कि हम इनको नहीं बुला रहे, और ट्रूडो साहब ने भी कहा था जी कि कुछ लोगों की फिलॉसफी हमसे नहीं मिलती, तो शायद इसलिए अमरीका जो है उसने ये किया। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि क्यूबा, वेंजुएला, निकारागुआ को तो बुलाया नहीं है अमरीका ने, ठीक है जी, और मेक्सिको, मेक्सिको ने कहा था हम बॉयकॉट करेंगे, बोलिविया, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम भी अटेंड नहीं कर रहे हैं ये। तो अगर ये 7, 8, 9 कंट्रीज जो हैं अमेरिकाज की, ये इसके अंदर अटेंड ही नहीं कर रही हैं, तो सिर्फ जो है अमेरिका, कनाडा और 1-2 और कंट्रीज बैठ के, तो इसके अंदर क्या बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने कहा था बाइडन साहब ने कि हम जी डेमोक्रेसी की और हम जो है डिफेंस लाइन्स की और सारी चीजें जो डैमेज किया था ट्रंप ईरा में उसको खत्म करने की बातें करेंगे, तो भाई आप क्या करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं जी ईरान का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो अब ये 8-9 कंट्रीज जो हैं, बल्कि 10 कंट्रीज जो हैं, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही हैं। और हिस्टोरियन एलिजेंड्रो वेलास्को और रोबोटो लोवोटो, ये भी अवार्ड विनिंग सल्वाडोरियन यूएस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जो बाइडन साहब ने समिट ऑफ अमेरिकाज बुलाई है ये बिल्कुल फेल हो गई है, जाहिर है, विच इज ऑब्वियस ऑफकोर्स। तो वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये अब अपने गोल्स जो हैं ये कैसे फुलफिल करेंगे अगर जो है ये इतने सारे कंट्रीज नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले आपको अगर पता होए, हमने आपको पूरी एक जो है रिपोर्ट बताई थी रिचर्ड ऑल्सन के बारे में कि वो किस तरह से लॉबिंग कर रहे थे उसके लिए, कतर के लिए। अच्छा, अब नए खुलासे आए हैं, एफबीआई ने आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीज किए हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो फॉर्मर मरीन जनरल हैं जॉन आर एलन, इनको भी इलीगल फॉरेन लॉबिंग कैंपेन फॉर कतर जो है उसके लिए इनको अब जो है जिम्मेदार ठहराया गया है, और इनको कहा गया है कि आपके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल केस बनाया जाएगा। रिचर्ड ऑल्सन जो थे आपको पता ही है यूएई में और पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर थे, और इन्होंने कहा था कि जिस वक्त मैं अभी ये सर्विस में ही थे तो इन्होंने जो है लॉबिंग शुरू कर दी थी। इमाद जुबेरी जो कि एक पॉलिटिकल डोनर थे, उन्होंने इनको जो है वो कॉन्टैक्ट किया था, जिसको कि अब यूएस कोर्ट के अंदर ये 12 ईयर प्रिजन जो है वो काट रहे हैं, क्योंकि इनको पहले ही पकड़ लिया गया था। और उन्होंने उनके मुताबिक ये जो थे एलन साहब, ये जो है मरीन जनरल एलन और ये रिचर्ड ऑल्सन, ये सारे जो है इनको इसने कॉन्टैक्ट किया था और इनको कहा था कि जी आप इनके लिए लॉबिंग करें ताकि जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसके साथ आप ये जो क्राइसिस, डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ गया है कतर का और उसके नेबर्स का, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, तो उसके साथ जो है खत्म किया जा सके, तो उसके लिए। अच्छा, ये जो यूएस में जो लॉ है कि जब आप हाजिर सर्विस होते हैं तो आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए, कोई या कंट्री के लिए काम नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अंटिल आपका जो है टेन्योर ना सिर्फ खत्म हुए बल्कि 3 साल और तक आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह समझा जाता है कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, बड़े हाई पोजीशन पे थे, आपके कॉन्टैक्ट्स थे, तो अब वो आप कॉन्टैक्ट्स यूज करके दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट्स को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये जी भारत, उन्होंने कहा जी कि ये जो लॉ है इस लॉ को جو ہے وہ کریں گے. اور اس لیے بھی آج ان کے اوپر کیس بنایا گیا ہے ایلن صاحب کے اوپر کہ ان کو بہت سارے جو ہے ای میلز بھیجے گئے تھے 2020 میں کہ تم آؤ انٹرویو دو اور ہمیں بتاؤ کہ اصل میں کیا ہوا ہے, اور انہوں نے جو ہے کوئی اپیئر نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی. تو یہ آج کی بہت بڑی امریکہ کی خبر ہے جو کہ یہ آج ہیڈ لائنز جو ہے وہاں کے اخباروں میں بنی ہوئی ہے. پاکستانی بورن یو ایس سٹیزن ڈاکٹر آصف محمود جو ہیں جی, انہوں نے آج کیلیفورنیا سے جو ہے وہ جیتا ہے ڈیموکریٹک جو پرائمری کی جو ریس ہو رہی تھی اس کے اندر, اور انہوں نے اپنا جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھا اس کو ہرایا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 11% انہوں نے زیادہ ووٹس لیے ہیں. ڈاکٹر محمود جو ہیں کافی پاپولر ہیں وہاں پہ, اور یہ جو ہیں پہلی جو فرسٹ کانگریشنل ریس جو ہے وہاں پہ وہ انہوں نے اب حاصل کر لی ہے, اور یہ ہے کیلیفورنیا ڈسٹرکٹ 40 کی, اور انہوں نے جو ہے ینگ کم جو ان کے ریپبلکن کاؤنٹر پارٹ تھے ان کو ہرایا ہے. ڈاکٹر محمود کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کھاریاں پنجاب کے کھاریاں علاقے سے ہیں, اور انہوں نے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے ایم بی بی ایس کی ڈگری لی تھی, اور امریکہ کے اندر کافی یہ جو ہیں بڑے ڈاکٹر ایز اے بڑا میجر ڈاکٹر جو ہیں وہ اس میں کام کر رہے تھے. تو اب یہ فرسٹ راؤنڈ انہوں نے جیتی ہے, تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اب یہ آگے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. بہرحال یہ کافی بڑی جو ہے وہاں پہ جیت سمجھی جا رہی ہے. ہندوستان ٹائمز کے مطابق جناب آج جو امریکہ کے جنرل ہیں چارلز اے فلن کمانڈنگ جنرل یو ایس آرمی پیسیفک جو ہیں وہ آج انڈیا میں پہنچے ہوئے ہیں, اور ان کو سارا کچھ بتایا گیا کہ چائنا جو ہے کیسے انڈیا کے کچھ علاقوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر رہا ہے اور وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے. ان کی ملاقات آج ہوئی انڈین آرمی کے جو چیف ہیں جنرل منوج پانڈے کے ساتھ, اور انہوں نے بائی لیٹرل ڈیفینس کوآپریشن کے اوپر بہت زیادہ بات کی, اور چار دن کے وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں یہ انڈیا. لیکن انہوں نے بہت زیادہ کنسرن شو کیا کہ یہ جو لداخ کا ایریا ہے اور ایل اے سی لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے اس کے اوپر چائنا جو بڑھتا جا رہا ہے اس میں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اور جرنلسٹ جو تھے انہوں نے پھر ان سے کوشچن کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سچویشن کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی آئی اوپننگ ہے اور بڑی الارمنگ ہے جس طرح سے چائنا اپنا انفراسٹرکچر اور یہ سارے بریجز اور یہ سارا کچھ وہاں پہ ڈیولپ کر رہا ہے, تو ہم اس کو ساری چیزوں کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایرانین فارن منسٹر حسین عامر عبداللہ جو ہیں وہ بھی ہندوستان میں پہنچے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بھی دو ملاقاتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جیت دوال صاحب ان کے ساتھ ملاقات کی, اور دوسری ملاقات انہوں نے کی ہے مودی جی کے ساتھ. تو یہ جو یہاں پہ ان کی جو باتیں ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے حسین عامر عبداللہ صاحب نے ایک دفعہ سے پھر کہا کہ یہ جو مسلم سینسٹیوٹیز ہیں ان کا ہندوستان کو خیال کرنا چاہیے, اور پروفٹ محمد کے بارے میں نعوذ باللہ جو ابھی بی جے پی کے دو فارمر جو فنکشنری سے جنہوں نے بات کی تو وہ صحیح نہیں ہے. تو ان کو جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے جو ریپرزینٹیو ہیں ایس جے شنکر صاحب, انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا, بلکہ منسٹر ہیں وہ آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کے, انہوں نے ان کو بلایا تھا اور ان کے انویٹیشن پہ یہ آئے تھے ہندوستان. تو یہاں پہ ملنے کے بعد انہوں نے اپنے جب کنسرنس شو کیے تو انڈین گورنمنٹ ان کو کہا کہ نہیں, ہمارے لیے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی بڑی عزت ہے ہمارے دل میں, اور ہم نے جو ہے فورن ایکشن لیا اور ان کو کیا. تو پھر ان کی جو میوچل اگریمنٹ آئی ہے جو وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران سمجھتا ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ کریکٹیو میجر لیا ہے, اور ایک اگریمنٹ ان کے بیچ میں میوچل لیگل اسسٹنس آن سول اینڈ ٹریڈ میٹرز سائن کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم جو ہے اس کو اب یہ دونوں جو ہیں کریک کر سکیں گے ایران اور انڈیا دونوں مل کے. ایک رپورٹ آج آئی ہے انڈیا کے کچھ اخباروں میں, اور اس کے مطابق جو ہے بی جے پی میں اب کوئی بھی مسلم کینڈیڈیٹ نہیں رہے گا جو ان کے راجیہ سبھا کے ممبرز بنیں گے بی جے پی کی طرف سے. اس کی وجہ یہ انہوں نے بتائی ہے کہ جی کہ جو تین لوگ ابھی تک تھے, ایک تھے مختار عباس نقوی, ایک سید ظفر اسلام اور ایک ایم جے اکبر, ان سب کا ٹینیور جون اور جولائی کے اندر اینڈ ہو رہا ہے. تقریباً 300 ممبرز ہیں لوک سبھا کے اندر اور اس میں بھی کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ کہا جا رہا تھا جی کہ جس وقت یو پی کے 2022 الیکشنز ہو رہے تھے तो यहाँ पे खास तौर पे इनको कहा गया था कि यूपी के अंदर ये जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने कोई भी अपने साथ मुस्लिम्स को नहीं मिलाया। हालांकि 100 सीट्स में से एटलीस्ट उन्होंने कहा था कि 20 मुस्लिम कैंडिडेट्स होना चाहिए टू रिप्रेजेंट 30% ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन, और 140 विद 20% जो पॉपुलेशन की इनकी रिप्रेजेंटेशन थी मुसलमानों की, और 40 में थी 60-70% रिप्रेजेंटेशन। लेकिन फिर भी बीजेपी ने यूपी से किसी मुस्लिम को फील्ड नहीं किया था। तो अब ये इनको पूछा जा रहा है कि ये जून जुलाई के महीने में जब ये तीन भी चले जाएंगे तो बीजेपी के अंदर तो कोई मुस्लिम फेस रहेगा ही नहीं। तो अब इसके ऊपर कोई बीजेपी की तरफ से तो जवाब नहीं आया है, मगर इनके एक ऑफिशियल ने, बीजेपी के मुस्लिम ऑफिशियल ने कहा है कि कुछ लोगों को शायद एक्सटेंशन दी जा रही थी, लेकिन इसलिए नहीं दी जा रही कि शायद उनसे कुछ और बड़ा काम जो है वो लेना है। तो अब ये काफी जो है इसने आंखें रेज की हैं हिंदुस्तान के अंदर कि इतनी बड़ी जाहिर है नेशनल लेवल पे ये पार्टी है और रूलिंग पार्टी भी है, तो इसके अंदर कोई मुस्लिम जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ना राज्यसभा के अंदर ना ही लोकसभा में। तो ये अब काफी चिंता का बायस है जी, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा मुल्क और कोई मुसलमान उसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।
और वो ये वो इंडिया जो कि अपने आप को सेकुलर इंडिया
कहता है। ठीक है, अच्छा जी, आपको याद ही होगा कि एक वाकया हुआ था रेप का, निर्भया केस आया था 2012 में इंडिया में, जिसने सारे हिंदुस्तान को हिरा दिया था, जिसमें कि एक बस के अंदर एक जो बच्ची थी उसको रेप किया गया था। उसी तरह का मिलता जुलता अब एक किस्सा जो है वो बिहार के अंदर आया है, और एक चलती बस के अंदर जो है तीन लोगों ने एक माइनर लड़की जो है उसको अलेजली रेप किया है। ये इस बच्ची का कहना ये था कि जी इसको इन्होंने कहा कि आओ हम तुमको जो है वो कोल्ड ड्रिंक देते हैं, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक में इन्होंने एक गोली डाल दी थी, उसको पीते ही जो है ये अनकॉन्शियस हो गई और उसके बाद इन्होंने गैंग रेप इसको किया। तो अब जो तीन अक्यूज्ड हैं, पुलिस का कहना है कि उसमें से दो अक्यूज्ड जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और बस जो है उसको सीज कर दिया गया है और बच्ची जो है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। तो अब ये फिर से हर वक्त ये राइट्स ग्रुप जो है इंडिया में कह रहे हैं कि भाई ये जो मोदी जी का नारा था बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ, तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये जो नारा है ये कहां तक ठीक है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन अ गर्ल इज बीइंग रेप्ड एंड यू नो गैंग रेप समटाइम्स। जैसे कि अभी हमने आपको लास्ट वीक ही बताया था कि हैदराबाद में एक बच्ची जो है उसको भी इसी तरह किया गया है। तो अब ये वाकये जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इनके ऊपर कुछ भी लोग कह रहे हैं एक्टिविस्ट इंडिया में के कुछ रोक नहीं लगाई जा रही है, तो अब पता चलेगा। पाकिस्तान के अंदर जी कहा गया है कि जितनी भी मार्केट्स हैं वो 8:30 को शट डाउन कर दी जाएंगी, क्योंकि बिजली जो है उसका बड़ा क्राइसिस मुल्क में शुरू हो गया है। ये एक मीटिंग हो रही थी जिसको के चेयर कर रहे थे जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और इसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स थे सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के, जो केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं महमूद खान वो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा था। बहरहाल चारों सूबे जो हैं इस बात पे राजी हो गए हैं इन प्रिंसिपल के 8:30 के बाद से ये जो है सब बंद कर दी जाएं, अब इनके ऊपर कंसल्टेशन चलेंगी। पंजाब और बलूचिस्तान ने कहा है जी कि हमको अपने ट्रेडर से पूछना पड़ेगा कि क्या उनके लिए ये फीजिबल है कि नहीं है। तो फिर सिंध भी इसमें शामिल हो गया है, तो अब अगर तीन सूबे जो हैं वो अपने बिजनेस कम्युनिटी से पूछ के बताएंगे तो अब लग नहीं रहा कि जैसे ये 8:30 बंद कर सकते हैं,
बहुत मुश्किल,
तो मुश्किल हो गया है ना। तो अब देखेंगे क्या होता है इसके ऊपर। इसके अलावा जी गवर्नमेंट ने आज ये भी अनाउंस किया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वेडिंग्स 10 बजे के बाद आगे नहीं जाएंगी, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी वन डिश सिर्फ सर्व की जाएगी इनके अंदर, और कोई ये 10 किस्म के जो खाने जो दिए जाते हैं वो बिल्कुल नहीं दिए जाएं। और उन्होंने कहा है जी कि ये इसमें हम वैसे तो उन्होंने कहा था कि हम हौले हौले, आपको हमने कल ही खबर बताई थी कि हम लोड शेडिंग खत्म करते जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा जी कि नहीं, वेडिंग्स जो है वो रात गए तक चलती हैं और बिजली का क्राइसिस है तो ये वेडिंग्स नहीं चलेंगी। और वैसे भी वेडिंग्स भी आपको पता है बहुत ज्यादा वो रोशनियां की जाती हैं, तो वो और उन्होंने कहा जी कि ये नोटिफिकेशन जो है 10 बजे तक की वेडिंग और वन डिश जो अलाउड होगी अब वेडिंग्स में इस्लामाबाद में, उसके नोटिसेज इस्लामाबाद पुलिस और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजे जा रहे हैं, और वायलेटर्स जो है उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा, इनके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करने की जरूरत है। एक लिहाज से तो अच्छा है, वन डिश होनी चाहिए, क्योंकि इतने बेताशा खाने के ऊपर इतना पैसा लगता है ना, आप सोचें कि कई कई लाख रुपए का जो बिल होता है वो सिर्फ खाने का होता है, ये मैरियट का और सरीना होटल का इस्लामाबाद
जी, आप ये तो होटल्स के नाम ले रही हैं, कहीं भी आप जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ भी अब लाखों में जो है ना वो खाना जो है वो इसमें आपकी एक या दो तीन डिशेस होंगी, ऐसे नहीं कि बहुत लैविश खाना हो, तो ये तो आप मैरियट या पीसी या वारी सरीना, तो मतलब ये तो फाइव स्टार होटल्स की आप बात कर रही हैं, अगर आप जो गली मोहल्ले में जो बैंक्वेट हॉल्स खुल रहे हैं पाकिस्तान में हर बड़े शहर में आप उनका हाल देखें तो आपको नहीं किया इट्स वेरी एक्सपेंसिव आई थिंक ये अच्छा स्टेप है लेकिन क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिकली फेस किया है होगा कुछ नहीं
नहीं कुछ भी नहीं होगा
सिर्फ जो फायदा होना है इस पूरे सिचुएशन में वो जो हमारे पुलिस भाई हैं उनकी चांदी होने वाली
है बिल्कुल वही बात है असल में हुआ है तो बिल्कुल आमिर की बात को मैं एंडोर्स करती हूँ मुझे पता है बहुत सारे जो अमीर लोग इस्लामाबाद में थे ना जब उनके ऊपर जब वो आती थी ना पुलिस या वो करती थी या तो वो कहते थे अच्छा जी पैन साढ़े नाल मुका लो या फिर वो कहते थे जी फाइन दे देंगे हम फाइन दे देंगे तो वो फाइन दे के ना तो वो कहते थे फाइन देंगे मगर खाने का हम ये ऐसे नहीं रोकेंगे
खाना चलेगा
लेकिन बहुत कम लोगों ने इसको फॉलो किया था उस वक्त भी तो बहरहाल देखेंगे अब क्या है क्योंकि वैसे भी हमारी कौम को बात माननी तो वैसे भी नहीं आती तो बहरहाल देखेंगे अब क्या होता है अच्छा जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि अब वो अपने सारे वर्कर्स को कहा है कि भाई तैयार रहो क्योंकि अब एक बहुत बड़ा फिर से हम जलसा करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो मैं जो है ये पॉलिटिक्स जो है वो नहीं कर रहा हूं मैं ये जिहाद कर रहा हूं मुल्क के लिए इसलिए कि इन करप्ट लोगों को कंट्री को रन करने का कोई भी जो है वो हक नहीं है वो कहते हैं कि ये जो रूलिंग कोअलिशन गवर्नमेंट है ये बिल्कुल गलत स्टेप्स उठा रही है मेरे साढ़े तीन साल का जो मेरा टेन्योर था उसके अंदर हमने सिर्फ 55 और 50 रुपीज पर लीटर बढ़ाया था पेट्रोल और डीजल की कीमत इन्होंने पिछले 10 डेज में 60 रुपीज जो है अभी तक बढ़ा चुके हैं और भी बढ़ा रहे हैं तो ये जो है ये इस तरह नहीं रह सकते ये एक पीटीआई की नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग है वो कर रहे थे इस्लामाबाद में तो ये बातें उन्होंने सब यही की हैं उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट फेज में हम अगर आपको ट्रूली फ्रीडम चाहिए तो हमको जो है रेडी रहो एक और मोर्चा निकालने के लिए इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्ला साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि हमने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को बुलाया है हमने कहा है कि हमारे साथ आके बैठो हमारे साथ बात करो ताकि नेक्स्ट इलेक्शन की बात की जा सके पीटीवी के एक टीवी प्रोग्राम से बात कर रहे थे राणा सनाउल्ला साहब उन्होंने कहा जी कि पीएमएलएन जो है वो तो करना चाहती थी अर्ली इलेक्शन लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का बिहेवियर जो है बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है तो इसलिए हम जो है अब नहीं करेंगे अर्ली इलेक्शन हमने अपनी कोअलिशन पार्टियों से भी पूछा है और अगर कोई भी इस्लामाबाद में आने की कोशिश करेगा तो उसको गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी और अगर इन्होंने जो है ये ना किया तो इनके ऊपर जो है फिर से जो है वो सख्ती की जाएगी इनके साथ और उन्होंने कहा जी कि ये जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये सब इमरान खान के बनाए हुए हैं और इन्होंने कहा ये जो ब्राइब्स के चार्जेस हैं फराह खान उर्फ गोगी जो कि फर्स्ट लेडी की बड़ी क्लोज फ्रेंड थी उनको अब जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो ये आज इन्होंने बातें की आईएसपीआर की आज एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक जो डीजी आईएसपीआर हैं उन्होंने आज कहा है कि ये जो खाम खागी बातें अदारों के साथ नाम लगा के उनके लगाई जाती हैं ये दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड वो बात कर रहे थे जनाब एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जहांगीर तरीन साहब के बारे में जिसके के बारे में अभी एक आई थी ट्वीट आई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे कहा गया है कि तुम इमरान खान के अगेंस्ट काम करो जहांगीर तरीन के मुताबिक के मुतलिक ही आई थी एक सॉरी शौकत तरीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन उनके खिलाफ आई थी कि वो कह रहे थे कि जी इसमें एक जर्नलिस्ट जो था वो क्लेम कर रहा था अपने टीवी शो में कि शौकत तरीन ने को ये कहा गया है कि तुम इमरान खान को बिट्रे करो और तुम जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तुम हेल्प करो तो शौकत तरीन साहब ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया गया था और उन्होंने कहा था कि ये एक ब्लेटेंट लाए है और यही जबान आज जो है आईएसपीआर ने भी कहा है कि ये ब्लेटेंट लाए अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस जो है इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये मैलिशियस एलिगेशंस जो है इनको बंद करना चाहिए और खाम खाई अदारों और लीडर्स के खिलाफ जो है बात आप ना करें और क्लेम भी ना करें कि हमारे पास अंदर की खबर है अनलेस एंड अंटिल यू हैव एक्चुअली अंदर की खबर पीएमएलएन और पीपीपी के बीच में जी अब जो है ये कुछ तय पा गया है कि पंजाब के अंदर अब जो असेंबली इलेक्शंस होंगे उसके अंदर सीटें जो हैं वो कौन किसको कितनी मिलेंगी आज जो है ये डिस्कशन हो रही थी हमजा शरीफ और जो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के और पीपीपी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के साथ बिलावल हाउस में तो वहां पे इन्होंने कहा है कि जी हम ये जो 20 सीट्स वेकेंट हो गई हैं पंजाब असेंबली में क्योंकि आपको पता ही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दी थी ये सीटें सारी जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो इन प्रोटेस्ट तो अब वो कह रहे हैं कि इन सीटों के ऊपर अब जो है हम इलेक्शंस करवाएंगे और आपको पता ही है कि ये पीटीआई के जो लोग हैं वो वापस इसलिए भी नहीं आ सकते क्योंकि उनको जो है अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है बलूचिस्तान के अंदर जी जो किला सैफुल्ला का एरिया है उसके पास एक بس جو ہے وہ گری ہے اور اس بس میں انفارچونیٹلی 22 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک اس میں سے بچہ جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے. یہ بس جو تھی لورالائی سے زوب میں جا رہی تھی جب یہ ہل ٹاپ سے گری ہے اختر زئی کے ایریے میں, اور وہاں پہ جو ہے اب ریسکیو کا کام جاری ہے, لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے. اینڈ جناب آور باجی از بیک, کنگنا رناوت ہماری باجی جو ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ باجی کتنی ایکٹیو ہے ہماری, ہیں جی کنگنا رناوت صاحبہ جو ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, لیکن سوچتی سمجھتی تو ہے نہیں, بس جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہیں. خیر ان کی مرضی ہے, ان کے ملک میں ڈیموکریسی ہے, ہیں جی تو جس طرح ساڑے ملک میں ڈیموکریسی ہے, عامر جیڑا ہے جو مرضی چاہتا ہے بولتا رہتا ہے, اسی کدھر روکے عامر نو تو تسی باجی نو کس طرح روک سکتے ہو, ہیں جی. اچھا تو یہی ہوا ہے وہاں پہ. اچھا جی انہوں نے جو ہے قطر ایئر ویز کے جو سی او ہیں اکبر الباقر, ان کو بہت بڑی باتیں کہہ دیں کہ یہ تو اس کا آدمی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, اور جسٹ بیکاز یہ بہت بڑا آدمی ہے یہ ایک بیچارے چھوٹے غریب انڈین آدمی کو کیسے دبا سکتا ہے, اور وہ سب لوگ جو کہ ان جیسے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ جو ہیں ملک کے ساتھ بہت ساری باتیں کر دی. جی بہت ساری باتیں کر دی. اچھا جی اصل میں ہوا کیا تھا, اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو نوپور شرما صاحبہ ہیں جنہوں نے کبھی وہ ڈیروگیٹری ریمارکس پروفٹ کے بارے میں کہے تھے, پیس بی اپون ہم, تو اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ریئیکشن آ گیا تھا, اور اس پہ ایک لڑکا ایک ٹویٹر یوزر ہے ویشو دیو, اس نے جو ہے کہا کہ جی یہ جتنے بھی انڈینز ہیں ان کو یہ جو قطاری ایئر لائن ہے اس کو بوائیکاٹ کرنا چاہیے. تو اس نے ایک میم کی طرح ایک جوک بنایا, اور اس میں اکبر الباقر جو سی او ہیں قطر ایئر ویز کے ان کی ایک جو ہے وہ بول کچھ اور رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اس کو ویشنو دیو کو کہہ رہے ہیں پلیز تم انڈینز یوز کرتے رہو قطر ایئر ویز, مت چھوڑو اس کو. اچھا اس نے تو میم بنائی, کنگنا بیوی جو ہیں شی فیل فار اٹ, تو اس نے کہا کہ تم سارے انڈینز جو اس کے لیے اس بلی کے لیے اس کو جی سی او صاحب کو کہا اس بلی کے لیے جو تم لوگ چیئر کر رہے ہو, اور تم لوگ جو ایک بوجھ ہو اس اوور پاپولیٹڈ کنٹری میں یعنی کہ انڈیا کے اوپر تم سارے بوجھ ہو, اور یہ اس طرح کے جو امیر لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ تم کوئی اور ایک پاور ہے جس کی نظر میں سب لوگ جو ہیں برابر ہیں. پھر اس کو بعد میں کسی نے بتایا باجی یہ جوک تھا. اب اتنا کچھ ایک چھیک کے لیے بول دیا ہے جی, بہرحال اس کو ہٹانا پڑا, لیکن ابھی تک ریئیکشن نہیں آیا, لیکن مجھے لگتا ہے بہت ہی گندا ریئیکشن آنے والا ہے آگے سے. کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں باجی, ہوش کرے کرو, دیکھے آتے کرو سچی بھی یہ خبر کہ نہیں. اچھا جناب آج پھر سے باجی جو ہیں وہ بہت زیادہ آج بھڑکی ہوئی ہیں, کیونکہ باجی آج پھر سے نیوز میں, آج باجی کا پھر سے دن ہے جی کنگنا رناوت کا. اے جو نوپور شرما ہیں ان کو کچھ اب تھریٹس ملے ہیں, جو انہوں نے بات کی ہیں باتیں غلط اس کے اوپر ان کو تھریٹس ملے ہیں. اس کے اوپر جی پھر سے کنگنا رناوت صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, جب تم لوگ ہمارے جو ہیں گاڈز کے ہندو گاڈز کے بارے میں بات کرتے ہو تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, تو اگر تم لوگوں کو نوپور کے ساتھ کچھ اپنے چیزوں سے نہیں مانتے ہو, اس کی اچھی نہیں لگ رہی ہیں, تو عدالت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ, بیکاز شی از انٹائٹلڈ ٹو ہر اوپینینس, اور ہمارا جو گورنمنٹ ہے وہ افغانستان نہیں ہے اور افغانستان کی طرح فنکشن نہیں کرتا, ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے. شاید آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد کرا دوں. اب جب یہ انہوں نے باتیں کی اور وہ سی او والا بھی واقعہ ہوا تو آج ٹویٹر بھڑک اٹھا. تو ٹویٹر کے اوپر کیا ٹرینڈ تھا کہ جو لفظ ڈم ہے انگلش ڈکشنری میں اس کو ریپلیس کر دیں کنگنا سے. کچھ لوگوں نے کہا کہ لفظ ڈم برا مان جائے گا اگر آپ نے ایسا کیا تو. تو آج بہت مرمری چل رہی تھی ٹویٹر کے اوپر, ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں. اچھا جناب آج ڈمپل کپاڈیا جو ہیں ان کی آج برتھ ڈے تھی, شی ٹرن 65, تو ان کی جو بیٹی ہیں ٹوئنکل کھنہ انہوں نے اپنی اور اپنی جو بہن ہے رنکی ان کی بڑی پیاری ایک تصویر جو ہے وہ کی ہوئی تھی شیئر. یہ آپ کو پتا ہی ہے راجیش کھنہ کی بیٹیاں ہیں, تو ٹوئنکل کھنہ نے ان کو کہا کہ برتھ ڈے گرلز ہارٹ از ایون مور بیوٹیفل دین ہر فیس, ہیپی برتھ ڈے موم. تو لوگ یہ پکچر جو تھے وہ دیکھ رہے تھے اور ان کو جو ہے بڑا ان کے اوپر جو ہے وہ پیار آ رہا تھا. اور آج شلپا شیٹی کی بھی برتھ ڈے تھی, تو شلپا شیٹی کو آج ایک بڑا پیارا ٹریبیوٹ دیا ہے سنیل شیٹی نے, جو کہ ان کی بہت ہی آئیکونک ایک مووی آئی تھی دھڑکن, اس سے انہوں نے ایک کلپ شیئر کیا جس میں کہ شلپا شیٹی جو ہیں یلو اور آلیو رنگ کے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس پہ سنیل شیٹی نے کہا ہیپی برتھ ڈے سپر فٹ شیٹی گرل, और धड़कन आपको पता ही है 2000 में आई थी, इसमें जो थे अक्षय कुमार भी थे, माहिमा चौधरी भी थी, धर्मेश दर्शन ने ये फिल्म बनाई थी और म्यूजिक दिया था नदीम शरवन ने। तो जो ये इनको जो मिली थी बहुत ज्यादा फ्लाइट मिली थी, यानी बहुत फेमस हो गई थी शिल्पा शेट्टी, वो ये धड़कन के बाद से बड़ी आइकॉनिक मूवी थी, इसके बाद हो गई थी। तो जनाब ये आज था इंडियन एक्सप्रेस की, आज एक न्यूज है और इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज के मुताबिक इंडिया की एक टॉप साइक्लिस्ट जो है जो वापस आ गई है एक इंटरनेशनल मैच से, उन्होंने एक लेटर लिखा था जो इंडिया की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसको, और उन्होंने कहा जी कि मेरे जो कोच हैं के आर के शर्मा वो मेरे साथ जबरदस्ती करते थे, मेरे कमरे में एक दिन घुस आए और मुझे पोस्ट ट्रेनिंग मसाज देने लगे, एंड देन ही इंसिस्टेड दैट आई स्लीप विद हिम। और वो कहते हैं जी के उन्होंने कहा जी कि तुम मेरी वाइफ की तरह मेरे साथ बिहेव किया करो। तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये सारा कुछ इसीलिए, ये स्लोवेकिया के अंदर ये सारी टीम गई हुई थी इंडिया की साइकिलिंग की, जिसमें 5 मेल्स और ये एक फीमेल थी, तो ये वापस आ गई। इन्होंने अपने मां बाप को कहा जी कि मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स के अंदर मेरा कोई जो है वो करियर बन सकता है, मेरी शादी का आप इंतजाम करें। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उसने पूरे का पूरा एक तो स्लोवेनिया से कंटिंजेंट वापस बुला लिया है, और ऊपर से उन्होंने कहा जी कि हम अब एक जो है इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर बिठाएंगे। तो ये आज काफी इस खबर ने भी इंडिया के अंदर तूफान मचाया कि भाई लड़कियां जो हैं जो फीमेल हैं एथलीट्स उनके साथ। क्रिकेट इंडिया की क्रिकेटिंग दुनिया की बहुत बड़ी खिलाड़ी मिथाली राज 39 इयर्स उनकी एज है, ये थी कैप्टन थी इंडियन फीमेल टीम की। इन्होंने आज अचानक से अनाउंस कर दिया है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है ये रिटायरमेंट ले रही हैं। तकरीबन 20 साल ये खेली हैं और इनको अब रिप्लेस किया है हरमनप्रीत कौर से, अब उनको ओडीआई का बनाया गया है कैप्टन। और सिलेक्शन कमेटी आज मिली थी क्योंकि इनका जून 23 से श्रीलंका का टूर शुरू होने वाला है, तो अब मिथाली राज की जगह हरमनप्रीत कौर को बनाया जा रहा है। एंड जनाब आपको पता ही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का ओडीआई आज फर्स्ट ओडीआई था मुल्तान के अंदर, तो जनाब बड़ा जबरदस्त ये जो खेला इन्होंने, और वेस्ट इंडीज के जो ओपनर हैं शाय होप उन्होंने तो बहुत जबरदस्त जी फटे चक दिए, 134 बॉल्स पे उन्होंने 127 बनाए और 305 फॉर 8 था इनका स्कोर, जो कि लग रहा था बहुत ही ज्यादा है, लेकिन बाबर आजम ने एक दफा से फिर बचा लिया, 107 बॉल्स पे 103 रन्स बनाए, तो पाकिस्तान ने 306 फॉर 5 किया और पहला ओडीआई जीत लिया। वाह जी वाह क्या बात है, दोनों टीमों के स्कोर देखो जरा क्या बात है, इसका मतलब है मुल्तान की जो पिच है वो बैटिंग पिच है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट द ओलंपिक जिमनास्ट, इनके अंदर जो है गोल्ड मेडलिस्ट सिमोन बाइल्स, एली राइसमन और मकेला मरूनी हैं, और इन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि ये जो है हमारा जो स्पोर्ट्स डॉक्टर है लैरी नसर, ये हमें बहुत ज्यादा सेक्सुअली अब्यूज करता है, और इसके साथ और भी कोई 70-80 के करीब लड़कियां थी, बल्कि 90 कुछ लोग तो कहते हैं लड़कियां थी जिन्होंने कहा था कि ये इसने इनको सेक्सुअली अब्यूज किया था। तो इन्होंने एक शिकायत दी थी और शिकायत के बाद जो है एफबीआई के दो एजेंट्स जो थे उनको कहा गया था कि तुम ये सारी इन्वेस्टिगेशन करो, बहरहाल जी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की और जस्टिस डिपार्टमेंट जो था उन्होंने कहा था कि हम वो जो दो एफबीआई के इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको हम जो है प्रोसिक्यूट भी अब नहीं करेंगे। तो एज अ रिजल्ट सब लड़कियों ने आज $1 बिलियन के लिए एफबीआई को सू किया है, अमेरिकन एफबीआई को उन्होंने सू किया। उन्होंने कहा जी कि हमने 2015 में जब ये नसर जो है डॉक्टर इसके खिलाफ जिस वक्त हमने खबर डाली थी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उसके बाद 70 यंग एथलीट्स को इसने सेक्सुअली अब्यूज किया, तो चूंकि एफबीआई ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो इसलिए उन्होंने एजेंसी के ऊपर सू किया है। अभी तक जो है कोई भी इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हुई है, लेकिन देखेंगे आने वाले दिनों में जनाब क्या होता है।
तो ये थी हमारी आज की खबरें
गर्मा गर्म।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
रियल एस्टेट की दुनिया में काबिले भरोसा और बाएतमाद नाम
सहरिंग नरक्षा और हुमायूं खान।
अगर आप अपना घर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या किराए पे लेना और देना चाहते हैं या प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत ही थोड़ी रकम से एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम आपको बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे पैसे बनवाने का तरीका बता सकते हैं।
तो देर किस बात की, फौरन कॉल करें टीम HS को, नंबर है 6476719249 6472205 5907।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन दी सालाना फार्मर्स मार्केट वापस आ गई है जिसनु प्रेजेंट करनगे मेरिडियन क्रेडिट यूनियन वाले 2022 सीजन जो के शुरू हो रहा है जून 11 तो ए हर हफ्ते 8 बजे तो लेके 1 बजे तक अक्टूबर 8 तक जारी रहेगा चाहे बारिश आए चाहे ना मार्केट ते साडी चलदी रहेगी जो के लोकेटेड है वेलिंगटन स्ट्रीट और गेज पार्क विच इसका मजा उठाने वास्ते और अपने पसंदीदा किसाना और वेंडर्स नु मिलन वास्ते तैयार हो जाओ ज्यादा जानकारी वास्ते brampton.ca/market नु विजिट करो ते आओ फिर मिलने आ इस मार्केट विच
कहते हैं कि माया को खींचे माया करकर लंबे हाथ हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप तल्लुक आते हैं इनके आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त दिया जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं कॉल हैरी सॉन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
एशियन फूड सेंटर इंडियन कैनेडियन साफ सुथरी ग्रोसरी दे नाल
कारकार विच मशहूर हो चुकिया एशियन फूड सेंटर हमेशा सस्ते रेट ते वधिया सेवावां देण लई वचनबद्ध है
अपने एरिए विच पेंदे किसे भी स्टोर विच जाओगे तो जरूर बचत पाओगे
वधेरी जानकारी लई एशियन फूड सेंटर दा इक्को इक नंबर याद रखो 416-740-3200
एशियन फूड सेंटर 416-740-3262 एशियन फूड सेंटर
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसा मंद नाम हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस रिन्यूअल ऑप्शंस मॉर्गेज डिफिकल्टीज डाउन पेमेंट इश्यूज सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फंड्स सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से नंबर टू कॉल 6479235659 लाइसेंस नंबर 10530
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो दांत निकालना हो क्राउन्स ब्रिजेस डेंचर्स इम्प्लांट्स बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज रूट कैनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टिप ब्रश भी है कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री
पर जाना कहाँ है
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट हैमिल्टन में 905-521-0540
अरे भाई हम जानते हैं कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है जैसे रेड लाइट सिग्नल बैंक की लाइन और हर रोज वो कॉफी की लाइन मगर हम करते हैं आपके अपनों के बैंक अकाउंट्स पे मनी ट्रांसफर इन सबसे जल्दी यानी रिसीव कटी नहीं और मनी ट्रांसफर डन सिर्फ और सिर्फ एबल एक्सप्रेस की रिलायबल सर्विस के साथ पाकिस्तान में डेडिकेटेड कस्टमर सर्विसेज हमारी पहचान एबल एक्सप्रेस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉल नाउ 416-230-4444 एबल एक्सप्रेस
चलो कहीं दूर ये समा छोड़ के
अरे भाई कहाँ चल दिए
लराची बाई नोमान एजाज जहाँ मिलेंगे आपको पाकिस्तानी ऑथेंटिक लाहौरी खाने
सच
जी हाँ गोलगप्पे पापड़ी चाट से लेकर बारबेक्यू आइटम्स बिरयानी लाहौरी चिकन और गोट कढ़ाई बीफ नहारी चना मसाला और हलीम
और बच्चों के लिए
चिकन सैंडविचेस चिकन विंग्स बीफ बर्गर और फ्राइज
और मीठे में क्या होगा
हाँ पिस्ता आइसक्रीम लाहौरी कुल्फी फालूदा रबड़ी गुलाब जामुन और गाजर का हलवा
कहाँ है ये लराची बाई नोमान एजाज
10220 Derry Road, Milton. Reservation या order के लिए call करें 365-877-8252.
Pinky, बबलू, चलो हम भी चलते हैं.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
स्प्रिंग में गार्डनिंग सीजन अब शुरू हो चुका है कैरेटन सब्जी फार्म पर।
हर तरह के फल फूल और सब्जियों की पनीरी, चाहे लेने हो करेले,
भिंडी,
चप्पड़ कद्दू,
टिंडा,
हलवा कद्दू,
रामतोरी,
पालक,
सरसों का साग,
धनिया,
लहसुन के बीज,
प्याज की पनीरी,
प्याज के बीज और हर तरह के गार्डनिंग टूल्स,
पतली,
रम्बा,
कई,
मिट्टी, खाद और पॉटिंग मिक्स।
एट कैरेटन सब्जी फार्म 9058409000
0050 एयरपोर्ट रोड कैलाडन, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील के कॉर्नर पर।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
Pizzas Bros and Wings, 6th location to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yaho, Mississauga. Fresh aur mazedar pizzas ki variety, ya order karna ho apna man pasand custom made pizza. Iske alawa, pizza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8838, 905-789-8838,
Grill in the Hut in Mississauga में order via phone, इमरान भाई को call करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को enjoy करना है तो आप order place कीजिए 905-405-8383, Grill in the Hut।
ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ، دانت نکلوانے ہیں، لگوانے ہیں، کراؤنز ہیں، بریجز ہیں، ایون اگر امپلانٹس یا بریسز لگوانا چاہتے ہیں تو برامپٹن میں ہینسن اور کوئنز کے انٹرسیکشن پہ، اور اب سگما ڈینٹل کلینک ولیمز پارک وے اینڈ کرائسلر کے انٹرسیکشن پہ. بہترین ڈینٹسٹ تمام انشورنس پلان کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اپوائنٹمنٹ بنائیے گا، ساز و آواز کا حوالہ دے کے ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے گا. ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ،
9045478661.
برسوں سے جانا پہچانا قابل اعتماد نام ریئل اسٹیٹ کی کسی بھی ضرورت کے لیے کال کیجیے 6478986245 6478982545 سٹیز کے ریئل اسٹیٹ کی.
کیا آپ کو مارگیج کے لیے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے؟ مارگیج ڈیلیجنٹ کے مکیش چوہان کین ہیلپ. ود 18 ایئرس آف ایکسپیرینس ان فائنینشل انڈسٹری ہی اسپیشلائزز ان مارگیجز فار سیلف امپلائڈ. کال مکیش چوہان 6475127000. اور اگر آپ کو بیڈ کریڈٹ، کنزیومر پروپوزل یا بینک کرپسی جیسے ایشو ہیں اور بینک نے ڈیکلائن کر دیا ہے، ویدر یو آر فرسٹ ٹائم ہوم بائر اور نیڈ ری فائنینس اور پرائیویٹ مارگیجز، کال مکیش چوہان 6475127000 FSRA 10252. Condition applies.
Once again, Amir Shamsi of Universal Promotion brings
9th Annual Taza Mississauga Halal Food Festival, June 11th and 12th, Saturday and Sunday. Fun, food and entertainment.
Live performance by Humaira Channa and Qawwali Night by Abu Muhammad and Abu Farid Ayaz of Coke Studio.
Khane peene ki aur kapdon ke beshumar stall, bachchon ke liye beshumar activities aur haan, Pakistan ka truck art exhibition, Mango Festival.
Free admission, free parking, Celebration Square, Mississauga.
For stall booking and sponsorship call Adnan Shamsi, Atif Shamsi ya phir Amir Shamsi 416-662-7861.
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، سب پہ کرم ایک سا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی جیسے دعا مانگتا ہوں
یہ نفرت کی آگ نہ گلشن جلا دے جو اس آگ کو میرے مولا بجھا دے میں ایسے کرم کی ہوا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
گھٹا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
صداقت کے گہنے صدا ان پہ سایہ تیرا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.